الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه. صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه. وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب السمر مع الأهل والضيف. یہ بخاری شریف کیا ایک عنوان ہے، ٹائٹل ہے، عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی بات چیت کرنا شریعت کی نظر کے اندر صحیح کام نہیں ہے. عشاء کی نماز کے بعد نمبر ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بات چیت کرے، خاص طور پر جن کی شادی نہیں ہوئی ہو، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملی والوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ کوئی مسافر ہو، سامان کی حفاظت کی اس کی ذمہ داری ہو، تو سامان کی حفاظت کے لیے اس کو جاگنا پڑتا ہے، تو جاگنے کے لیے بات چیت کرنی پڑتی ہے. تو یہ سیکیورٹی والے، حفاظت کا کام کرنے والے، یہ لوگ بھی رات کے وقت پر عشاء کے بعد بات چیت کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر، کسی کے یہاں کوئی مہمان آیا ہو تو مہمان کے ساتھ بھی عشاء کی نماز کے بعد آدمی کچھ بات چیت کر سکتا ہے. یہ تین موقع ہیں. چوتھا موقع علم کی مجلس ہے، دین سیکھنے سکھانے کی مجلس ہے، اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا جائز ہے. ورنہ شریعت میں عشاء کی نماز کے بعد خاص طور پر دنیاوی محفل لگانا، دنیاوی بات چیت میں لگنا، یہ چیز پسند نہیں کی گئی. اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ رات کو دیر دیر تک لوگ جاگتے رہتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، تہجد بھی نہیں ہونے پاتی، صبح میں بھی کافی دیر سے لوگ اٹھتے ہیں، بڑے نقصان ہے اس کے اندر. इसीलिए ईशा के बाद जरूरत ना हो तो जल्दी सो जाओ और सुबह के अंदर जल्दी उठ जाओ। इसके बाद एक हदीस नकल की है, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर रदी अल्लाहु ताला अन्हो, ये हजरत आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा के बड़े भाई होते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हो के बेटे होते हैं। उन्होंने ये हदीस नकल की है कि सुफ्फा के ऊपर रहने वाले सहाबा सब गरीब और फकीर किस्म के लोग थे। सुफ्फा का चबूतरा आपने भी देखा होगा, मदीने मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक कबर मुबारक के पीछे एक चबूतरा बना हुआ है, जमीन लेवल से थोड़ा ऊंचा है, आज भी मौजूद है। उसको सुफ्फा का चबूतरा, सुफ्फा का ओटला कहा जाता है। वहां पर गरीब सहाबा रहते थे, मीनिंग जिनका दुनिया में कोई कारोबार नहीं, खेती बाड़ी नहीं, मकान नहीं, नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, फुल टाइम दीन सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए वो लोग इस चबूतरे पर ओटे के ऊपर रहते थे। गरीब लोग थे और इनकी तादाद, उनकी संख्या कम ज्यादा होती थी। कम से कम 70 भी रहे हैं और 400 तक भी इनकी तादाद हो जाती थी। जाहिर है कि जब 400 की तादाद हो जाती होगी तो चबूतरे पर भी जगह नहीं रहती होगी, फिर तो उनको मस्जिद में आ जाना पड़ता होगा। तो ये गरीब सहाबा थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ध्यान रखते थे, उनके खाने का, उनकी ज़रूरत का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र रखते थे। ये सुफ्फा पर रहने वाले गरीब सहाबा मदीना के तमाम मुसलमानों के मेहमान थे, किसी एक घर के मेहमान नहीं थे, पूरे मदीना के सब लोगों के ये मेहमान थे। हर एक आदमी ये समझता था ये मेरे मेहमान है, ये मेरे मेहमान है, मैं इनकी खिदमत करूं। लोग इनका ख्याल रखते थे और एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि भाई जिसके घर में दो आदमी का खाना बना हो वो ये सुफ्फा पर से तीन सहाबी को घर ले जावे और जिसके घर पर चार आदमी का खाना हो वो पांच या छह आदमी को घर ले जावे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। खाने का कोई इंतजाम नहीं था, तकलीफ के हालात थे, इसीलिए ये ऐलान फरमाया। आज भी ऐसी तरतीब हो सकती है कि भाई मस्जिद में कोई जमात आ गई या कोई नया मदरसा खुला, उसमें किचन नहीं है, डाइनिंग नहीं है, तो एक एक दो दो बच्चों को लोग घर ले जावे और अपने घर ले जाकर खिला लेवे। दारुल उलूम देवबंद जब शुरू हुआ तो बिल्कुल शुरू जमाने के अंदर वहां भी यही तरतीब थी, दूसरे मदरसों में भी ऐसी तरतीब रही है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई इंतजाम नहीं है, तो एक एक दो दो बच्चों को लोग घर ले जावे, घर ले जाकर खाना खिला देवे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ऐलान किया कि भाई घर में पोजीशन देख लो कितना खाना बना है। बाज मरतबा ऐसा होता है कि चार आदमी की नियत से बनाया है लेकिन ज्यादा बनाया है, कि छह आदमी भी खा लेवे तो कोई हरज नहीं है। तो जिनके घर में चार आदमी जितना हो और ज्यादा हो तो छह आदमी को ले जाओ, और अगर चार आदमी का खाना बना है और ज्यादा नहीं बना है, मापो माप बना है, तो पांच आदमी को ले जाओ खाना खिलाने के लिए। या हुजूर ने इख्तियार दिया, तुम्हारी मर्जी, चार को ले जाओ, पांच को ले जाओ, जितने को ले जाना चाहो खुशी से ले जाओ। गर्ज ये कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ऐलान फरमाया, चूंकि ये बेचारे गरीब लोग चबूतरे पर पड़े रहते थे, अपना घर नहीं, अपने पास कोई आमदनी नहीं, इनकम नहीं, कैसे जिंदगी गुजारे। ये ऐलान करने के बाद हर एक सहाबी ने अपनी खुशी समझी कि मैं भी नेकी कमाऊं, मैं भी ले जाऊं अपने साथ। हर सहाबी ये हिम्मत कर रहे हैं, चूंकि मदीना वालों में उस जमाने में भी और आज भी इकराम का जज्बा बहुत ज्यादा है, इकराम बहुत करते हैं वो। हम देखते हैं कि पीर और जुमेरात को इफ्तार के दस्तरखान लगते हैं तो रोजा ना हो उनको भी वो लोग दस्तरखान पर बिठाते हैं, इसरार करके बिठाते हैं। तो सहाबा ने अपनी खुश नसीबी समझी कि हम ले जावे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो तीन साथियों को अपने घर ले गए कि तीन सहाबी को मैं ले जाता हूं अपने घर पर। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस सहाबी को अपने घर ले गए। हुजूर की हिम्मत देखिए, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी खाने पीने का कोई ज्यादा सामान भरा नहीं रहता था, बहुत सी मरतबा कर्ज लाना पड़ता था, उधार लाना पड़ता था, लेकिन हुजूर ने बड़ी हिम्मत फरमाई और दस सहाबी को हुजूर अपने घर ले गए। मालूम हो आदमी जितना बड़ा होता है इतना दिल भी बड़ा हो और दावत भी बड़ी हो। अल्लाह ने इंसान को बड़ा बनाया हो तो आदमी अपना दिल भी बड़ा बनाए और दावत भी बड़ी करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस आदमियों को अपने घर ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तीन साथियों की जिम्मेदारी ली कि मैं तीन को अपने घर ले जाऊंगा, खिलाऊंगा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुकना जरूरी था, कुछ जरूरी दीनी मशवरा था, जरूरी दीनी काम था, इसीलिए अबू बकर सिद्दीक घर खुद नहीं गए, अपने बेटे के साथ तीनों मेहमान को घर भेज दिया। इनके बेटे भी बड़े समझदार, हजरत अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर रदी अल्लाह ताला का बेटा, ये तीनों मेहमान को घर ले जाओ। उस जमाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकान और उनके बेटे हजरत अब्दुल रहमान का मकान अलग अलग था, और अरबों के अंदर ये आम रिवाज है पुराने जमाने से कि शादी होते ही बच्चों का घर वो अलग बसा देते हैं, कि शादी हो गई अब सब अलग अलग रहो शादी के बाद। और इसी में बड़ी खैर और बड़ी भलाई है कि शादी के बाद मकान अलग कर दो, किचन अलग कर दो, इसमें बड़ी भलाई है, बड़ी राहत है। हमने हमारे उस्ताद दारुल उलूम के शेखुल हदीस, देवबंद के शेखुल हदीस हजरत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नवरल्लाह मरकदहू के यहाँ के बारे में, उनके बेटे ने ही उनके इंतकाल के बाद एक आर्टिकल लिखा, उसमें पढ़ा हजरत के कई बच्चे थे, तो कहा एक बच्चे की शादी हुई, अब दूसरे बच्चे की शादी आ रही है, तो दूसरे बच्चे की शादी आएगी तो पहले बच्चे को बीवी के साथ अलग भेज देंगे रहने के लिए। पहले नंबर का बच्चा शादी के बाद एक डेढ़ दो साल घर में रहेगा, अब दूसरे की शादी का नंबर आया तो पहले को कहेंगे अब तुम्हारी बीवी के साथ अलग रहो। दो बहू एक साथ एक घर में ना रह गए, और वो खुद पैर पर खड़े भी हो, अपना कमाते भी हो जाए, अपना घर भी बसा ले, और ये बहुत अच्छी तरतीब है, इसको अपने यहां भी माहौल में लाना चाहिए कि शादी के बाद बच्चों को अलग रहने कर दो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकान और हजरत अब्दुल रहमान का मकान, बाप बेटे का, दोनों के घर में कुल 5 आदमी थे टोटल मिला करके। हजरत अब्दुल रहमान मेहमानों को लेकर के घर गए, इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुक गए और हुजूर ही के साथ उन्होंने खाना खाया, रात का खाना। देखिए हुजूर के यहाँ पहले से 10 मेहमान तो सुफा वाले, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रुक गए, उन्होंने भी हुजूर के साथ खाना खाया। और उस जमाने के अंदर आम रिवाज ये था कि शाम का खाना लोग मगरिब से पहले खा लेते थे, और बहुत बहुत हुआ तो मगरिब के बाद खाना खाते थे, ये उस जमाने में आम रिवाज था। और आयुर्वेद के माहिर डॉक्टर लोग भी इस वक्त भी यही कहते हैं कि सूरज डूबने से पहले खा लेने में इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहती है, और यही हुजूर के मुबारक जमाने का माहौल भी था। अब तो एक रात 11 बजे हम खाना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं कि रात भर एसिडिटी होती है, फिर ये पियो वो पियो ये सब होता है, ये तरतीब ही जो है मुनासिब तरतीब नहीं है। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खाना खाया, वहीं ईशा की नमाज भी पढ़ी, और ईशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ के हजरत अबू बकर सिद्दीक घर आए, काफी रात देर से। अजीब बात हो गई कि 3 मेहमान घर भेज दिए कि मेहमानों को खाना खिला देना, मुझे आने में देर हो जाएगी। और इधर ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां रुक गए मस्जिद नबवी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर, कुछ जरूरी दीनी मशवरा था। अब रात को देर का घर पर पहुंचे तो सबसे पहले बीवी जान हजरत उम्मे रुमान रदी अल्लाह ताला ना कहने लगी, इतनी देर से क्यों आए, जल्दी आते, आपने घर पर मेहमान भेजे थे तो आप भी जल्दी आ जाते मेहमान का ख्याल करके, बहुत देर से आप आए। बीवी ने ऐसा कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि अभी तक मेहमानों ने खाना खाया नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला उन्होंने जब मेहमान को घर भेजा था तभी कह दिया था कि इनको ले जाके खिला देना, उनको अंदाजा था कि उनको आने में देर होने ही वाली है, वो देर से पहुंचेंगे। कह दिया था कि मेहमान को खिला देना, लेकिन मेहमान भी मेहमान थे। जब घर वालों ने इसरार किया कि देखो ये खाना तैयार है, खाना लगाया है, खाना खा लो, तो तीनों मेहमान ये कहने लगे घर के मालिक कौन, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ है, मालिक कहाँ है, उनको बुलाओ। कहा वो तो वहां हुजूर के पास रुके हुए हैं, करना उनको आने दो, जब वो आएंगे तब हम खाना खाएंगे। मेहमान भी मेहमान थे, कहा हम अकेले नहीं खाएंगे, जब हजरत अबू बकर आएंगे उनका घर है तब हम खाएंगे। घर वालों ने बहुत समझाया, हजरत अबू बकर के बड़े बेटे हजरत अब्दुर्रहमान भी समझा रहे, खा लो, अगर तुम नहीं खाओगे और अब्बा आ गए तो हमारे ऊपर नाराज होंगे, खा लो खाना। मेहमान बिल्कुल नहीं माने, इससे मालूम हुआ कि मेहमान के साथ बैठकर घर वालों को खाना खाना चाहिए। बाद लोग क्या समझते हैं कि मेहमान हमारे खाने का मोहताज है, इसीलिए उसके सामने रख देंगे खा लो और खुद ही नहीं खाएंगे, ये जरा अच्छा तरीका नहीं है। मेहमान हमारे दस्तरखान पर बैठकर खावे ये हमारी खुशनसीबी है, उनका अदब है। आपको मसला बताऊं, आप अगर नफिल रोजा रखो और आपके यहां कोई मेहमान आ जावे और मेहमान कहे कि नहीं आपको हमारे साथ खाना पड़ेगा, तो रोजा तोड़ दो, बाद में कजा कर लेना, लेकिन मेहमान के साथ खाना खाओ, ये शरीयत की तालीम है। मेहमान के खातिर आदमी नफिल रोजा भी तोड़ दे, इतनी बात है शरीयत के अंदर, और मेहमान के लिए भी है। अगर आदमी किसी के यहां मेहमान जावे और रोजा रख करके जावे, अब वो घर वाले कहेंगे कि हमने तो पूरा खाना बना लिया है और आप रोजा रख के आए। बस मेहमान ऐसे होते पहले से खबर नहीं करते कि हमारा रोजा है, घर वाले समझते हैं कि मेहमान आ रहे हो खाना पका लेते हैं। तो मेहमान ने नफिल रोजा रखा तो मेहमान को चाहिए कि रोजा तोड़ दो लेकिन खाना खाओ, ये मसला है। और हम एक मर्तबा रोजा था नफिल रोजा, तो एक जगह पर हमको बुलाया है दावत में असर के बाद, तो हमने कहा कि भाई हम लोगों का तो रोजा है, तो जिन्होंने दावत की थी वो भी मुफ्ती थे, तो उन्होंने हमको फौरन मसला याद दिलाया, असर के बाद रोजा तोड़वाया था, हालांकि ग्रुप में एक घंटा बाकी था, ताकि मुफ्ती लोग कब अमल करेंगे, तोड़ो रोजा खाओ बैठ करके। हमने असर के बाद के लिए कहलवाया था कि आपकी दावत है, तो आपने तो रोजे पे, आज जो है गालिबन मोहर्रम थी इसका रोजा था, अंदाजा ऐसा ही कि मोहर्रम का रोजा था। तो मेहमान भी अजीब, हजरत अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे खा लो, अब्बा आएंगे नाराज होंगे, मेहमान कहते नहीं अब्बा जान को बुलाओ, हजरत अबू बकर को आने दो तो ही हम खाएंगे। अब अंदाजा है कि दोपहर से मेहमान गए हुए हैं, मेहमान खा नहीं रहे, घर वाले खिला रहे हैं फिर भी नहीं खा रहे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक देर से आए, इसलिए कि ईशा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पड़ी, सुन्नते हुजूर फारिग हुए, हुजूर आराम के लिए तशरीफ ले गए, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक घर गए, कोई जरूरी दीनी मशवरा था, काफी रात को गए। अब जाकर के पता चला कि मेहमान ने तो खाना नहीं खाया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत नाराज, बहुत गुस्से के, पहले तो घर वालों पर गुस्से हुए कि तुमने मेहमानों को खिलाया क्यों नहीं, घर वाले कह रहे हमने खिलाया लेकिन तुम्हारे मेहमान कैसे खाते ही नहीं है, वो तुम्हारी सीट पकड़ के बैठे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो बाप है, हजरत अब्दुर्रहमान बेटे हैं। तो हजरत अब्दुर्रहमान को अंदाजा हो गया कि आज अब्बा नाराज होंगे, गुस्से भी होंगे कि तुमने मेहमान को जबरदस्ती खिलाया क्यों नहीं, मेहमान की खिदमत क्यों नहीं की। इसलिए हजरत अब्दुर्रहमान तो अब्बा जैसे घर में आए कहीं जाके छुप गए कि अभी गुस्से होंगे तो पहली पकड़ मेरी होगी कि तूने मेहमान का इकरार नहीं किया। वो छुप गए जाकर गए। अब घर में आते ही बीवी ने कहा, पता चला कि मेहमान ने खाना नहीं खाया, तो हजरत अबू बकर बहुत गुस्से एकदम गर्म हो गए और गुस्से होकर के अपने बेटे हजरत अब्दुर्रहमान को आवाज दे रहे, ए बेवकूफ जाहिल कहां है, गुस्से में। बड़ों को छोटों पर गुस्सा आ ही जाता है और गुस्से में इस तरह के अल्फाज निकल ही जाते हैं। अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक है, नबी के बाद जिनका दूसरा मकाम है, वो इतने बड़े आदमी, लेकिन नाराज हुए मेहमान की वजह से, मेहमान की खिदमत की वजह से, और अपने बेटे पर नाराज हुए। हक बनता है बाप को नाराज होने का। तो हजरत अब्दुर्रहमान तो छुप गए कि आज अब्बा का पूरा गुस्सा मेरे पर उतरेगा, तो एक दो मरतबा आवाज लगाई, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान निकल के आए नहीं, हिम्मत नहीं हुई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कसम दी कि मैं अल्लाह की कसम देता हूं, मेरी आवाज तू सुन रहा है, जहां छुपा हो निकल के आओ, फौरन निकल के आओ। अब हजरत अब्दुर्रहमान घबराए निकल करके आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, खाओ, क्यों नहीं खिलाया मेहमान को? तो कहा कि आपके मेहमान ही नहीं खाते, हमने तो बहुत कोशिश की, वो खाते ही नहीं, हमारा कसूर नहीं है, कसूर आपके मेहमानों का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेहमान के पास गए कि आप लोगों ने खाया नहीं? तो कहा आपका हम इंतजार कर रहे थे, आप आवे तब खाएंगे, अकेले नहीं खाएंगे। तो कहा लाओ खाना, खाना रखवाया। खाना जब रख दिया, मेहमान तीनों बैठ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी वहां थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा चलो खाना शुरू करो, खाओ। तो मेहमान ने जो अभी तक खाना नहीं खाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बहुत नाराजगी थी कि अजीब मेहमान के सुबह से मैंने भेज दिया था, भूखे बैठे रहे, खाना नहीं खाया, और मेरी वजह से नहीं खाया कि मैं आऊं तो ही खाऊं, खाएंगे। इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कसम खाई कि मैं खाना अब नहीं खाऊंगा, तुम ही खाओ, मेहमान हो तुम खाओ, कि मेरा इंतजार किया, मेरी राह देखते रहे, मेरी वजह से बैठे रहे, ये तुमने गलत काम किया, मैं अब खाना नहीं खाऊंगा, तुम लोग खाओ, खाना लगवाया। तो मेहमान भी जोरदार निकले, उन्होंने भी कसम खाई, हम भी नहीं खाएंगे खाना, कसम ही खा लेते हैं, खाना नहीं खाएंगे। तो पहली कसम हजरत अबू बकर ने खाई कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये सोच के कसम खाई कि मेरी वजह से राह देखने की जरूरत नहीं थी, क्यों बैठे रहे। तो मेहमान भी कहने लगे आप खाना नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, आपके लिए तो पूरा दिन भूखे बैठे रहे। मेहमानों ने भी कसम खाई, अजीब कसमा कसमी का मंजर हो गया। हजरत अबू बकर की बीवी ने भी कसम खा ली, मैं भी नहीं खाऊंगी। सब लोग एक तरफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अंदाजा हो गया कि यकीनन ये शैतान हमारे दरमियान में घुसा है, ये शैतान आया है जो हम लोगों को कसमें खिला रहा है कि हम इस तरीके से गर्म हो जाए, गुस्से हो जाए, ये शैतान हमारे दरमियान घुसा है। तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने खाना शुरू किया, बिस्मिल्लाह पढ़ गए, चलो कसम तोड़ो, कफारा दे देंगे लेकिन खाना शुरू करो। और देखो यहां रुक के एक मसला अच्छी तरह समझ लो, अल्लाह ताला ने जितनी चीजों को हलाल किया है उन हलाल चीजों को हम हराम नहीं कर सकते। जो कुरान में हदीस में शरीयत में हलाल है उसको हम हराम करने का राइट और पावर नहीं रखते। और जो चीजें हराम हैं उसको हलाल करने का हम पावर और राइट नहीं रखते। हलाल करने का पावर अल्लाह के पास, हराम करने का पावर अल्लाह के पास। कोई अपनी मर्जी से शरीयत में हलाल को हराम नहीं कर सकता, हराम को हलाल नहीं कर सकता। और किसी जायज और हलाल चीज को छोड़ने की कसम और मन्नत भी नहीं माननी चाहिए, ये भी अच्छी बात नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने गुस्से में कसम खाई कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, गुस्से में कसम खाई। बीवी ने भी खाई, मेहमान ने भी खाई, फिर समझ में आ गया ये शैतान का असर है, तो फौरन का नहीं गलत है, कसम तोड़ो, कफारा देंगे, खाना शुरू करो। तो जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कसम तोड़ी और खाना चालू किया, मेहमान ने भी खाना शुरू कर दिया कि अच्छा अब हम भी खाते हैं, आप खा रहे हैं हम भी खाएंगे, सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया। इस मौके के ऊपर एक खुल्लम खुल्ली बरकत जाहिर हुई, वो समझने की चीज है। हम बरकत के किस्से तो बहुत सुनते हैं लेकिन ये किस्सा चूंकि बुखारी शरीफ में आया इसलिए इतना पक्का, इतना मजबूत, इतना पावरफुल किस्सा है कि उसके बारे में हम कोई शक भी नहीं कर सकते। बाकी सुनते रहते वहां बरकत हुई, वहां बरकत हुई, यहां बरकत हुई, ऐसी बरकत हुई, वैसी बरकत हुई, लेकिन ये बुखारी शरीफ की हदीस है, एकदम परफेक्ट सच्चा वाकिया। सब ने खाना शुरू किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी खा रहे हैं, तीनों मेहमान भी खा रहे हैं, लेकिन अजीब बात ये देखी कि जब खुंचे में से लुकमा उठाते, लुकमा उठाया तो कुदरती तौर पर नीचे खाना ज्यादा आ जाता था। जितने लुकमे उठाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक लुकमा उठावे तो भी नीचे खाना आ जावे, मेहमान लुकमा उठावे तो भी नीचे खाना आ जावे, जितने लुकमे उठाते थे इससे ज्यादा खाना नीचे कुदरती तौर पर आ जाता था। इसीलिए कभी मेहमान से मत डरो, मेहमान अपनी रोजी मुकद्दर की लेकर के आता है। बाज लोग बहुत तंग दिल होते कि हमारे घर में तीन आदमी का तो पका है, ने अभी एक दो मेहमान को कैसे ले जा रहे हैं, खाना कम हो जाएगा। देखो एक सिंपल हिसाब में आपको बतला, घर में तीन आदमी का खाना बना है और आप एक मेहमान को एक्स्ट्रा ले जाओ तो क्या होगा, सब लोगों के हिस्से में थोड़ा थोड़ा कम आएगा और तो कुछ होगा नहीं। तीन आदमी का पकाया और चौथा हो गया तो सब लोगों के हिस्से में थोड़ा थोड़ा कम आएगा। और जो अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं शाकिर सबर वाले, उनको थोड़ा कम मिले तो भी काम चल जाता है कि भाई रोज चार रोटी खाते हैं, आज तीन रोटी खाई, क्या फर्क पड़ा, एक रोटी कम खाई तो इतना ही फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेहमान, गरीब, जमात, चंदे वाले, उन लोगों का इकराम किया करो, अल्लाह उसकी वजह से बरकतें अता फरमाते, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। अल्लाह के कुछ नेक बंदे तो ऐसे गुजरे हैं कि जो बगैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते थे, हमेशा मेहमान के साथ ही खाना खाते थे। इसीलिए मेहमान के मामले के अंदर आदमी को बड़ी हिम्मत रखनी चाहिए, अल्लाह मेहमानों की बरकत से बरकत देते हैं खाने। अब बरकत होना शुरू हुई, सब लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया, खुल्लम खुल्ला वो देख रहे अपनी आंख से, सब लोग दस्तरखान पे देख रहे कि जितने लुकमे उठाते हैं नीचे और ज्यादा होता है और ज्यादा आता है। मेहमानों ने पेट भर के खाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उन्होंने भी अच्छी तरह जमकर पेट भर के सबने खाया। अब जो देखा कुंचे का खाना तो समझ में नहीं आता कि पहले जितना था उतना है या उससे ज्यादा है। अजीब बात कि जितना पकाया था खाना इतना ही है या उससे ज्यादा, हालांकि चार आदमी खाना खा चुके। तो चार आदमी के खाना खाने के बाद भी खाना इतना है जितना बनाया था या उससे ज्यादा हो गया। लगता ऐसा था कि उससे भी ज्यादा हो गया खाना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बीवी को आवाज लगाई कि अरे बीवी ये क्या हो रहा है। तो बीवी ने भी घर में से जवाब दिया। देखो उस जमाने के अंदर औरतों के जवाब देने की स्टाइल भी बहुत अच्छी थी। यहां हदीस में लफ्ज है वकुर्रतु आईनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा ओ मेरी आंखों की ठंडक। बीवी ने शोहर को क्या कहा, ओ मेरी आंखों की ठंडक। यानी कितने अच्छे रिस्पेक्टेड अल्फाज बीवियां शोहर के लिए इस्तेमाल करती थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बीवी को आवाज लगाई तो उनकी फैमिली का नाम लेके आवाज लगाई, बीवी का नाम नहीं लिया बल्कि बीवी की फैमिली के तू फुलानी फैमिली की बेटी है इधर आ, ये क्या हो रहा है खाने में कितनी बरकत हो गई। तो उनकी बीवी ने आके और ज्यादा रिस्पेक्ट से जवाब दिया कि ओ मेरे शौहर मेरी आंखों की ठंडक। इसमें दुआ भी है और अच्छा लफ्ज भी है कि मेरे शौहर मेरे लिए मेरी आंखों की ठंडक बन के रह गए। देखो अल्फाज जो होते हैं ना वर्ड्स, उसका असर होता है, वो एक दुआ भी होते हैं। आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो तो उसका अच्छा असर होगा और उसकी एक दुआ है। तो अगर बीवी शोहर को कहे कि आप मेरी आंखों की ठंडक, तो अल्लाह हकीकत में आंखों की ठंडक बनाएंगे। और अगर ऐसे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आंखों का कांटा बनाएंगे। तो अल्फाज अल्फाज की भी बड़ी बात हुआ करती है। इसीलिए हमेशा शोहर को बीवी के साथ, बीवी को शोहर के साथ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, उसकी एक अच्छी बरकत होती है, उसका एक अच्छा असर हुआ करता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी ने आकर के यूं कहा कि ये तो जितना पकाया था ना उससे तीन गुना ज्यादा है, क्योंकि औरतें पकाती हैं उनको तजुर्बा ज्यादा होता है, का जितना पकाया है इसका तीन गुना ज्यादा है। अंदाजा लगाओ कितनी खाने में बरकत हुई, जितना पकाया था उसमें से तीन मेहमान ने पेट भर के खाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खाया, घर वालों ने खाया, फिर बचाव हुआ देखा तो जितना पकाया था उससे तीन गुना ज्यादा था। कितनी अजीब बरकत हुई। तो जब इन्होंने देखा कि इतना बरकती खाना है तो फौरन इन्होंने कहा कि अब खाना हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर भी भेजेंगे, इतना बरकती खाना तो हुजूर के लिए भी भेजेंगे। तो रात में देर से वो खाना हुजूर के यहां भेज दिया। अब हुजूर के यहां तो सब खा चुके थे, कोई बाकी नहीं था, सब फारिग हो गए थे। और हमारी तरह तो था नहीं मामला कि भाई रात में भी आवे तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ जाए, एक वक्त में तीन मर्तबा भी खा लेवे, एक वक्त में दो मर्तबा भी खा लेवे, एक वक्त में चार मर्तबा भी खा लेवे, क्वालिटी देखकर खा लेवे, क्या है वो देखकर खा लेवे। वहां ऐसा मामला नहीं था, एक मर्तबा खा चुके। अब रात को खाना आया तो रख दिया, रख दो अभी सुबह तक ऐसे के ऐसा ही रख दिया। अब सुबह हमें हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत लोग थे। हुआ ये था कि किसी कौम के साथ, किसी दुश्मन बेईमान लोगों के साथ लड़ाई न करने का जो एक वादा हुआ था उसका टाइम पूरा हुआ था। इसीलिए वहां से बहुत सारे लोग आए हुए थे। एक रिवायत में है कि 70 यानी 70 आदमी आए हुए थे, और वो इसीलिए आए थे कि रिन्यू करने के लिए कि हमारा और तुम्हारा आपस में सुलह शांति का जो करार है उसको रिन्यू करो, हमारा टाइम पूरा हो गया लेकिन रिन्यू करो, आपस में लड़ेंगे नहीं, सुलह से शांति से मोहब्बत में रहेंगे। उसको रिन्यू करने के लिए 70 आदमी आए हुए थे। वो 70 आदमी को हुजूर ने खाने बिठाया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहां का खाना आगे 70 आदमियों ने हुजूर के घर में खाया, फिर भी वो खाने के अंदर कोई कमी नहीं आई। आप अंदाजा लगाओ कि 4 आदमी का तकरीबन खाना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने बनाया था, 4 आदमी का खाना। लेकिन वो 4 आदमी के खाने के अंदर इतनी बड़ी बरकत हुई कि तकरीबन 100 से ज्यादा आदमियों ने खाया, हुजूर के घर वालों ने। 70 आदमी तो बाहर के आए हुए, फिर हुजूर की फैमिली, फिर वहां रात में हजरत अबू बकर की फैमिली और मेहमानों ने खाया, सब ने पेट भर के खाया। 4 आदमी का खाना 100 आदमियों ने खाया बल्कि ज्यादा, फिर भी वो खाना जो है खत्म नहीं हुआ, इतनी बरकत हुई उस खाने के अंदर। 2 मरतबा बरकत हुई, एक बरकत रात में हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के ऊपर, और दूसरी मरतबा बरकत हुई हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के ऊपर। ये किस्सा मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी नसीहत है, बहुत बड़ी इबरत है। एक तो यह है कि मेहमान का इकराम किया करो, ये बहुत बड़ी नेकी है। पहले क्या सिस्टम थी कि मस्जिद में मौज़िन साहब को मस्जिद के जिम्मेदार लोग कह के रखते थे। मैंने खुद देखा है वो जमाना, कोई 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, और अभी भी बास गांवों में ये सिस्टम मौजूद है कि जोहर और मगरिब दोनों नमाज के लिए मौज़िन साहब को, इमाम साहब को मस्जिद के जिम्मेदार लोग, बस्ती के जिम्मेदार लोग कह के रखते थे कि भाई नमाज के बाद देखने का, कोई मुसाफिर आदमी मस्जिद में नजर आ रहा है, कोई सफीर चंदे वाले नजर आ रहे हैं, कोई बाहर का आदमी नजर आ रहा है, अगर नजर आवे तो फौरन उसको पूछने का खाने की क्या तरतीब है। वो कहे कोई इंतजाम नहीं, तो फौरन उनके लिए खाने का इंतजाम करने का, किसी के भी घर से ले आओ और लाकर वो मेहमान को खिलाओ, या मेहमान को किसी के घर ले जाओ और ले जाके खिला दो, जोहर में भी मगरिब में भी, फिर उनके लिए रहने का इंतजाम कर देवे। ये बहुत अच्छी सिस्टम थी, इकरामुज़ैफ, मेहमानों का इकराम, उनको खाना खिलाना, ये बहुत बड़ा सवाब और बहुत बड़ी नेकी है। हम कहते हैं ना सदका सदका सदका, ये भी सदके की एक सिस्टम है, ये भी एक तरतीब है सदका करने की कि हमारे यहां महल्ले में मस्जिद में कोई नया मेहमान आवे, चंदे वाला आवे, कोई जमात आ गई, कोई और मुसाफिर आ गया, तो उसको खाना खिला देना, ये भी एक बहुत बड़ी प्यारी सदके की तरतीब है। ये भी तो कर सकते हैं, अब होटलों की सिस्टम है, किसी होटल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हमारे यहाँ कोई मेहमान आएगा, हम कह देंगे वहां जाके खा लो, फिर एक साथ हम पेमेंट कर देंगे, बिल चुका देंगे, ये भी एक तरतीब है। तो इकराम मेहमानों का, अब मेहमान हमने क्या समझा, जिनको हम पहचानते हैं, जानते हैं, हमारे रिश्तेदार है, हमारे ताल्लुक वाले, हम उसी को मेहमान समझते हैं कि इनको दावत देके बुलाओ या दावत के मौके पर याद करो, वही मेहमान नहीं, ये गलत है। दोस्त रिश्तेदार ताल्लुक वाले उनको खिलाना भी अच्छी चीज है, वो भी सवाब का काम है, لیکن یہ جو پردیسی مسافر آتے ہیں، اجنبی لوگ آتے ہیں، بے سہارا لوگ آتے ہیں، غریب لوگ آتے ہیں، پریشان لوگ آتے ہیں، ان کا اکرام کرنا یہ بھی مہمان نوازی ہے اور یہ بھی بہت بڑا ثواب رکھتے ہیں، بڑی فضیلت کی چیز ہے یہ بھی. بلکہ مالداروں کو کھلانے کے مقابلے میں ایسے غریبوں کو کھلانے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. اب مدرسے کے جو بیچارے چندے والے آتے ہیں، آپ ان کو نہیں کھلاؤ گے تو وہ ہوٹل میں کھائیں گے، اور بل کہاں سے نکالیں گے؟ جیب میں سے تھوڑا ہی دیں گے، وہ بل سفر خرچ میں لگائیں گے. اس کے بجائے آپ ان کو کھانا کھلا دیتے تو آپ کی طرف سے اتنا چندہ ہو جاتا، آپ ان کی اتنی بڑی مدد کر دیتے. یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. دوسری بات اس حدیث شریف سے یہ سیکھنے کو ملی کہ شوہر اور بیوی آپس میں اچھے انداز میں بات چیت کرے، ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ کے، ادب کے اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اور تیسری بات حدیث شریف سے یہ سیکھنے کو ملی کہ بہتر ترتیب یہ ہے کہ شادی کے بعد بچوں کو الگ الگ مکان میں سیٹ کر دینا چاہیے. آدمی کو اگر خدمت کی ضرورت ہو تو اس کی بھی ترتیب بنا لے رہے، لیکن الگ الگ فیملی نظام یہ اچھی چیز ہے. بعد میں لڑائی ہو، جھگڑے ہو، اسی لیے کہ دو بہو، تین بہو، چار بہو ایک گھر میں جمع ہوئے تو پھر جو جھگڑے ہوتے ہیں ہر ایک آدمی جانتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے. اس سے بہتر یہ ترتیب بہت اچھی، شادی کے بعد کچھ دن رکھو پھر الگ سے ویل سیٹ کر دو کہ جاؤ اب تم رہو الگ سے. اور چوتھی بڑی بات ہمارے لیے سیکھنے کی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت یہ دنیا کی گپ شپ، دنیا کی بات چیت، دنیا کی محفل لگانے کا وقت نہیں ہے. عشاء کے بعد اچھے کام میں وقت دو، اپنی بیوی کو، بچوں کو وقت دو، علم میں وقت دو، دینی مجلس میں وقت دو. کوئی باہر کا مہمان آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وقت دے دیا، باقی دنیا کی مجلسوں کے لیے عشاء کے بعد وقت ضائع مت کرو، اس کے بہت نقصان ہیں. جتنا ہو سکے اتنا جلدی ٹرائی کرو جلدی سونے کی، سو جلدی سو، صبح جلدی اٹھو، تہجد پڑھو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ بڑی خیر اور برکت کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان بھلی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کا نظام ایک اچھا، ایک پاکیزہ، ایک نورانی، ایک بہترین نظام والی زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی صلاتاً کاملہ وسلم سلاماً تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك رضاك والجنه اللهم انا نسالك رضاك والجنه اللهم انا نسالك رضاك والجنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہماری مکمل مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما بھائی بہنوں کی مغفرت فرما تمام ایمان والے مرد و عورتوں کی مغفرت فرما اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ تندرستی عطا فرماؤ اے اللہ سب کو حلال برکت والی آسان روزی عطا فرماؤ مقروضوں کے قرض عطا کروا دیجئے بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجئے بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجئے اے اللہ جو جس مصیبت میں ہیں اپنے کرم سے الجھن مصیبت تکلیف پریشانی دور فرما دیجئے قید و بند میں محبوسوں کو رہائی عطا فرماؤ اے اللہ مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرماؤ تمام اہل ایمان کو رہائی عطا فرماؤ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ علم میں برکت عطا فرماؤ تقوا میں برکت عطا فرماؤ زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ مکہ مدینہ کی بار بار حاضری عطا فرماؤ رکاوٹوں کو دور فرماؤ عافیت کا معاملہ فرماؤ اے اللہ ایمان پر وقت پر حسن خاتمہ عطا فرماؤ اے اللہ آخرت کی منزلوں کو راحت والی بنا دیجئے قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ جنت الفردوس عطا فرماؤ اے اللہ آپ کے عرش کا سایہ عطا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرماؤ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين